एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो किसी शांत झील जैसा नहीं बल्कि एक गहरे अंधेरे रेगिस्तान जैसा है।
हाँ, एक बार आप इसमें दाखिल हो गए तो वैसे ही बाहर नहीं निकल सकते जैसे आप अंदर गए थे।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पॉल बाउल्स के 1949 में आए उपन्यास द शेल्टरिंग स्काई की। ये उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध की राख से जन्मा है, जब दुनिया भर में एक बेचैनी थी, है ना?
हाँ, एक सवाल था कि क्या हमारे बनाए हुए समाज, रिश्ते, इन उसूलों का वाकई कोई मतलब है?
बिल्कुल, और उस दौर में अल्बर्ट कामू और जां पॉल सार्टर जैसे लेखक भी तो यही सवाल उठा रहे थे।
सही कहा, मतलब ये कि वो उस गहरी बेचैनी को पकड़ रहे थे कि क्या इस दुनिया का कोई गहरा मतलब है भी, या हम बस एक खाली ब्रह्मांड में अपना मतलब खुद गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
सही, और बाउल्स इसी सवाल को न्यूयॉर्क के आरामदायक माहौल से निकालकर सीधे सहारा के बेरहम रेगिस्तान में पटक देते हैं। तो आज का हमारा सवाल यही है, क्या होता है जब आधुनिक इंसान अपनी सुरक्षा की हर परत उतारकर उस चीज की तलाश में निकलता है जिसे वो असलियत समझता है?
क्या उसे सच मिलता है या सिर्फ एक अंतहीन खालीपन?
इस कहानी के केंद्र में तीन अमेरिकी हैं।
हाँ, पोर्ट और किट मुरेस्बी, एक शादीशुदा जोड़ा, और उनका दोस्त जॉर्ज टर्नर। पोर्ट और किट अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया घूमी है, लेकिन उनकी 12 साल की शादी में एक अजीब सी दूरी है।
हाँ, वो एक साथ होकर भी साथ नहीं है। ये दूरी मुझे शुरू से ही बहुत दिलचस्प लगती है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं या कम से कम ऐसा सोचते हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाते।
ऐसा लगता है जैसे उनके बीच कोई कांच की दीवार हो।
आपको क्या लगता है, वो इस यात्रा पर निकले ही क्यों हैं? क्या वो सच में कुछ खोजना चाहते थे?
मुझे तो ये खुद को धोखा देने जैसा लगता है, खासकर पोर्ट के लिए। वो कहता है कि हम पर्यटक नहीं, यात्री हैं।
हाँ, पर्यटक तो बस घूमकर जल्दी घर लौट आता है,
और यात्री अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़कर यात्रा को खुद को बदलने का मौका देता है। सुनने में ये बात बहुत गहरी लगती है।
गहरी तो है, पर क्या ये असल में अपनी निजी समस्याओं से भागने का एक बौद्धिक बहाना नहीं है?
बिल्कुल, वो अपनी नाकाम शादी से, अपने अंदर की बेचैनी से भाग रहा है और उसे एक ऊंचे फलसफे का नाम दे रहा है।
और उनका दोस्त टना,
टनर इसी का प्रतीक है। वो सुंदर है, सीधा साधा है और उस अमेरिकी जिंदगी का हिस्सा है जिससे पोर्ट और किट नफरत करने का दिखावा करते हैं।
लेकिन शायद मन ही मन वे वैसी ही सहजता चाहते भी हैं।
हाँ, इसीलिए तो किट उसकी तरफ खींचती है।
और इस पूरी कहानी का मंच, या मैं कहूं कि मुख्य किरदार, सहारा रेगिस्तान है।
सही, ये सिर्फ रेत और गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो इंसानी घमंड के प्रति पूरी तरह से उदासीन है।
वो विशाल है, खामोश है, और यही खामोशी पोर्ट और किट के अंदर के शोर को और बढ़ा देती है।
हाँ, उनके अंदर के खालीपन का आईना बन जाता है।
तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तरी अफ्रीका के एक भीड़ भरे शहर से, और पहले ही पल से एक बेचैनी का माहौल बन जाता है।
हाँ, वो शोर, गंदगी, अजनबी लोग, सब कुछ उन्हें परेशान करता है।
और यहाँ उनके रिश्ते की दरारें और भी साफ दिखने लगती हैं। वे अलग अलग कमरों में सोते हैं, ठीक से बात तक नहीं कर पाते।
और इसी तनाव के बीच दो घटनाएं होती हैं जो उनके रिश्ते के ताबूत में कील ठोकने जैसा काम करती हैं।
आप पॉट के उस अनुभव की बात कर रही हैं, एक वेश्या के साथ।
हाँ, वो और दूसरी तरफ अकेलापन महसूस कर रही किट का टेनर के साथ एक रात गुजारना।
मुझे नहीं लगता ये महज गलतियां थीं, ये उनके अंदर की हताशा का सबूत है।
मतलब
वे दोनों किसी तरह का जुड़ाव खोज रहे हैं, लेकिन एक दूसरे में नहीं बल्कि बाहर। कीट और टेनर का रिश्ता भी जुनून वाला नहीं था, वो बस एक पल का सहारा था।
तो ये दिखाता है कि वो कितने अकेले और नाखुश हैं।
बिल्कुल, उनकी शादी तो पहले ही टूट चुकी थी, ये यात्रा बस उस मलबे को सबके सामने ला रही थी। सही बात है, और जब वो टेनर को पीछे छोड़कर रेगिस्तान में और अंदर जाने का फैसला करते हैं,
तो ये असल में खुद से भागने की एक और कोशिश होती है। उन्हें लगता है कि शायद माहौल बदलने से वो खुद बदल जाएंगे।
लेकिन वो अपनी समस्याओं का सामान तो अपने साथ ही उठाए हुए हैं, और यहीं से उपन्यास का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है।
हाँ, उनका शून्य में प्रवेश। जैसे जैसे वो रेगिस्तान के अंदर जाते हैं, उनकी तथाकथित सभ्यता की परतें उतरने लगती हैं।
बसें खराब होती हैं, होटल गंदे मिलते हैं,
और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क टूटने लगता है। पॉट की तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन वो अपने बुद्धिजीवी अहंकार में इसे मानने से इनकार कर देता है।
और किट की हालत, वो तो हमेशा से अंधविश्वासी रही है, उसे बुरे शगुन दिखते हैं।
हाँ, और अब उसका डर हकीकत बनता दिख रहा है। मुझे किट का किरदार बहुत दुखी लगता है।
वो पोर्ट से जुड़ना चाहती है लेकिन उसे पता नहीं कैसे।
और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी नामुमकिन है।
उनके पासपोर्ट चोरी हो जाते हैं।
हाँ, अब वो न आगे जा सकते हैं न पीछे। वे एक दूरदराज फ्रांसीसी सैनिक अड्डे पर फंस जाते हैं।
ये बहुत सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। वो अपनी पहचान खो चुके हैं, वे अब कहीं के नहीं रहे।
और यहीं पर पोर्ट की बीमारी एक भयानक रूप ले लेती है। पता चलता है कि उसे टाइफॉइड है।
यहाँ बाउल्स का लेखन इतना कमाल का है, आप उस कमरे की घुटन, उस लाचारी और उस डर को महसूस कर सकती हैं।
वो पोर्ट जो हमेशा हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था,
अब उसका अपने शरीर पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। उसकी सारी बौद्धिक बातें धरी की धरी रह जाती हैं।
ये पढ़ते हुए सच में सांस रुक जाती है। किट को अकेले एक गंदे से कमरे में बिना किसी मदद के
अपने पति को तिल तिल कर मरते हुए देखना पड़ता है।
ये उपन्यास का वो हिस्सा है जो आपको हिलाकर रख देता है।
पोर्ट की मौत सिर्फ एक शारीरिक मौत नहीं है, ये उसके पूरे जीवन दर्शन का दुखद अंत है।
वो असलियत खोजना चाहता था और अंत में उसे मिलती है एक भयानक अर्थहीन मौत।
पोर्ट की मौत एक दर्दनाक अंत है, लेकिन शायद किट के लिए ये एक और भी ज्यादा भयानक शुरुआत थी।
हाँ, क्योंकि उसका टूटना सिर्फ दुख नहीं है, ये पहचान का पूरी तरह से मिट जाना है।
वो सदमे में उस किले से भाग जाती है और बिना किसी मंजिल के रेगिस्तान में भटकने लगती है।
यहीं से किट मोरेस्बी का वजूद खत्म होना शुरू हो जाता है।
उसे एक कारवां मिलता है जिसका मालिक बिल कासिम नाम का एक अमीर सौदागर है,
और वो उसे अपने साथ ले जाता है। और किट बिना कुछ कहे उसकी रखेल बन जाती है। वो उसे लड़कों के कपड़ों में थिपा कर रखता है।
ये बहुत अजीब है कि वो कोई विरोध नहीं करती, वो बस खुद को हालात के हवाले कर देती है।
शायद उस सदमे के बाद यही स्वाभाविक था। उसका दिमाग शायद और कुछ सहने की हालत में ही नहीं था।
वो अपनी भाषा भूल जाती है, अपनी याददाश्त खो देती है।
किट मोरेस्बी अब बस एक नाम था जिसका कोई मतलब नहीं था। वो एक तरह की सपनों जैसी लगभग जानवरों वाली अवस्था में जीती है,
जहाँ न कोई कल है न कोई बीता हुआ दिन, बस आज का पल है। आसदी है या चेतना और यादों के बोझ से एक अजीब तरह की आजादी।
क्या ये दिमागी तौर पर पूरी तरह बिखर जाना है या परम आनंद की एक अजीब अवस्था? बाउल्स इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते।
और उसका ये अजीब जीवन भी तब खत्म होता है जब बिलकासिम की बीवियां उसे ढूंढ लेती हैं
और उस पर हमला कर देती हैं। वो फिर भागती है। आखिरकार अमेरिकी दूतावास उसे ढूंढ लेता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
वो बस एक जिंदा लाश है, एक खाली खोल,
किसी को नहीं पहचानती, कुछ नहीं बोलती।
और उपन्यास का अंत वो मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया है।
जब उसे वापस अमेरिका भेजने की तैयारी हो रही होती है, वो अपने देखभाल करने वालों को चकमा देकर फिर से शहर की भूल भुलैया जैसी गलियों में घुम हो जाती है, हमेशा के लिए।
ये अंत कितना शक्तिशाली है।
बहुत ज्यादा। तो अब अगर हम इस कहानी के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो उपन्यास का नाम ही आता है, द शेल्टरिंग स्काई।
इसका क्या मतलब है, इस आश्रय देने वाले आकाश को?
ऐसे समझिए कि हम सब एक पतली सी छत के नीचे जी रहे हैं। ये छत है हमारा समाज, हमारे नियम, हमारे रिश्ते,
हमारा धर्म।
हमें लगता है कि ये हमें ऊपर के तूफान से बचा रही है।
हाँ, किट एक जगह कहती भी है, यहाँ का आसमान कितना अजीब है, लगता है जैसे कोई ठोस चीज हो जो हमें उसके पीछे जो कुछ है उससे बचा रही है।
और बाउल्स का सवाल ये है, अगर ये छत हट जाए तो क्या ऊपर सच में कुछ है या सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा और खालीपन?
और रेगिस्तान उसी खालीपन का प्रतीक है। वो उस छत को हटा देता है
और किरदारों को ब्रह्मांड की उस बेरहम सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देता है, जहां उनकी भावनाओं या उनके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है।
बिल्कुल। और उपन्यास में एक छोटी सी कहानी है सहारा में चाय के बारे में, तीन बहनें जो रेगिस्तान में चाय पीने जाती हैं और कभी नहीं लौटती।
ये तो सीधे सीधे किट के भविष्य की तरफ इशारा करती है।
हाँ, और ये उपन्यास ये भी दिखाता है कि हमारी पहचान, हमारी सभ्यता कितनी नाजुक है।
ये एक पतला सा लिबास है जो जरा सी मुश्किल आने पर तार तार हो जाता है।
पोर्ट और किट का पूरा बौद्धिक ढांचा रेगिस्तान की एक गर्म हवा के झोंके में बिखर जाता है।
और आखिर में अकेलेपन का विषय।
हाँ, पोर्ट और किट की शादी आज के दौर के रिश्तों का एक दर्दनाक चित्र है। वे एक बिस्तर पर होकर भी मीलों दूर हैं।
वो एक दूसरे तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते।
उनकी यात्रा उनके अकेलेपन को कम नहीं करती बल्कि और भी बढ़ा देती है, उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से और खुद से भी जुदा कर देती है।
तो ये उपन्यास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी खुद से भागने और असलियत की तलाश हमें खुद के विनाश की खाई में धकेल सकती है।
और ये आज भी उतना ही जरूरी सवाल है, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी पहचान का कितना हिस्सा सच में हमारा है और कितना उस समाज की बनाई हुई उस पतली सी छत का जिसके नीचे हम रोज अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।